आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित। विधेयक के पक्ष में 288 और विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे की बिक्री केवल सीलबंद पैकेट में होगी। बिक्री के लिए वैध खाद्य लाइसेंस होगा अनिवार्य। राज्य के सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। और फिट उत्तराखंड अभियान के लिए अगले 15 दिनों के भीतर कार्य योजना बनाने के निर्देश। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और यह केवल वक्फ बोर्डों के संशोधित संपत्तियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून किसी मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने विधेयक को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य किसी की संपत्ति जब्त करना नहीं है।
ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यह कानून बना के कैसे हटा सकते हैं।
श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्डों में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। गृहमंत्री अमित शाह ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा।
वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। न मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, न वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं। मान लो
इस विधेयक के प्रावधानों पर पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
वक्फ धार्मिक और सामाजिक कल्याण की जरूरतों को पूरा करने में खासकर वंचितों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। इस विधेयक का लक्ष्य संपत्ति प्रबंधन को और पारदर्शी करना, वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना और हितधारकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस विधेयक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा विरासत स्थलों और व्यक्तिगत संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करते हुए वक्फ संपत्ति प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है।
उत्तराखंड सरकार ने नवरात्रि के दौरान व्रत में इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर सख्ती बरती है। अब यह आटा केवल सील बंद पैकेट में ही बेचा जा सकेगा और इसके लिए वैध खाद्य लाइसेंस होना जरूरी होगा। स्वास्थ्य सचिव और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत खाद्य कारोबारियों को साफ हिदायत दी गई है कि बिना लाइसेंस और खुले में कुट्टू का आटा बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। अब कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए पैकेट पर निर्माण तिथि, पैकेजिंग और एक्सपायरी तिथि के साथ ही विक्रेता का लाइसेंस नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी कारोबारियों को खरीद बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा। गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कुट्टू के आटे के 6 सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों से लिए गए नमूनों में माइकोटॉक्सिन और फंगस जैसे हानिकारक तत्व पाए गए। इन मिलावटी उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार में कुंभ 2027 और चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। कैंप कार्यालय मायापुर में आयोजित इस बैठक में मेलाधिकारी कमेंद्र सिंह और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं, जो हरिद्वार शहर और कुंभ नगरी के हित में होंगी। इस संबंध में अगले एक सप्ताह में शासन स्तर पर बैठक की जाएगी, जिससे साधु संतों और महात्माओं के विचार विमर्श कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। श्री वर्धन ने बताया कि चारधाम यात्रा की शुरुआत में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए अन्य राज्यों और प्रमुख व्यक्तियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस दौरान तीर्थ यात्रा से परहेज करें। सरकार यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है। पत्रकारों से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और व्यवस्थाएं लगातार सुधारी जा रही हैं। पूर्ण कुंभ को लेकर साधु संतों के विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध है।
राज्य के सहकारी बैंकों को पिछले वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 2017 में अधिकतर जिला सहकारी बैंक घाटे में थे और आज प्रदेश के सभी जिलों के सहकारी बैंक लाभ की स्थिति में हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश भर के सहकारी बैंकों को 250 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है और जिलों की बैंक की 280 शाखाएं लाभ की स्थिति में हैं। डॉक्टर रावत ने बताया कि प्रदेश में अभी 49 बैंक शाखाएं घाटे में चल रही हैं। इनमें से अधिकतर शाखाएं कुछ वर्ष पहले ही खुली हैं और आने वाले दो वर्षों में ये बैंक की शाखाएं भी लाभ की स्थिति में आ जाएंगी। फिट उत्तराखंड अभियान के लिए अगले 15 दिनों के भीतर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। खेल, स्वास्थ्य, आयुष, खाद्य, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग मिलकर इसकी कार्य योजना तैयार करेंगे। देहरादून में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिट उत्तराखंड अभियान राज्य और जिला स्तर पर हर महीने वृहद स्तर पर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ईट राइट बी फिट के तहत आम जनता तक चीनी, नमक और तेल का सीमित उपयोग करने का संदेश पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान को स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और ग्राम स्तर तक फैलाने को भी कहा। श्री धामी ने स्कूलों और कॉलेजों में नियमित स्वास्थ्य कैंप लगाने के साथ ही मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के रजतोत्सव कैलेंडर में इस अभियान को शामिल किया जाए और युवा एवं महिला मंगल दलों को जोड़कर गांव तक स्वास्थ्य, खानपान की आदतों और शारीरिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि श्रमिकों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं को एक छत के नीचे लाया जाए ताकि पात्र श्रमिकों को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। सचिवालय में उत्तराखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं को एक साथ जोड़कर लाभार्थी को अधिकतम लाभ दिया जाए और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और सरल बनाने और उनके बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में बताया कि उत्तराखंड में अब तक करीब 30 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है, जिनमें से 17 लाख महिलाएं और 13 लाख पुरुष हैं। इनमें से 20 लाख श्रमिकों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनमें 2.5 लाख निर्माण श्रमिक और 17.5 लाख अन्य श्रेणियों के कामगार हैं। अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। वक्फ बिल लोकसभा में पारित, खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण समाचार पत्र का शीर्षक है, वक्फ विधेयक को लोकसभा की मंजूरी, इसी खबर पर हिंदुस्तान लिखता है, पहली बाधा पार, सदन में रात 2 बजे तक मत विभाजन के बाद फैसला। इसी खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, वक्फ बिल लोकसभा में पारित, 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद 232 के मुकाबले 288 वोट से हुई जीत। प्रदेश में कुट्टू के आटे की खुली बिक्री पर रोक की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, एक्शन में धामी सरकार, आटे के पैकेट पर पिसाई, पैकिंग और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित, विधेयक के पक्ष में 288 और विधेयक के खिलाफ 232 वोट पड़े। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे की बिक्री केवल सीलबंद पैकेट में होगी, बिक्री के लिए वैध खाद्य लाइसेंस होगा अनिवार्य। राज्य के सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपए का हुआ लाभ और फिट उत्तराखंड अभियान के लिए अगले 15 दिनों के भीतर कार्य योजना बनाने के निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त होगा। अगला समाचार बुलेटिन प्रवाहन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।